भक्ति काल हिंदी साहित्य के मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल था, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक के कालखंड को भक्ति काल कहा। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका यह नामकरण उचित है। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की समय निर्धारित समय सीमा स्वीकार की है। भक्ति आंदोलन के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। पहला, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश निराश और पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। दूसरा, हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। तीसरा, तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान दिया। नाथ सिद्ध योगी अपनी राष्ट्रदर्शी शुष्कवाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकट भाव में उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से उत्प्रोत्साहित ने इस अभाव की पूर्ति की। चौथा, भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं सदी में अलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। पांचवा, आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रहे तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। छठा, डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्रावण उपजी लाए रामानंद। सातवां, सर जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। उनका यह तर्क हास्यास्पद है कि रामानुजाचार्य को भावेश में प्रमोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला। आठवां, भारतीय धर्म साधना भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदीर्घ परंपरा रही। महाभारत के भीष्म पर्व में शांडिल्य भक्ति सूत्र में एवं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन पहले ही हो चुका था। दक्षिण के अलवार भक्तों ने भक्ति भावना के उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय सिद्धांत अथवा संप्रदाय का नाम, प्रवर्तक आचार्य का नाम, समय। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य 1017 से 1127 ईस्वी। द्वैतवाद मध्वाचार्य 1199 ईस्वी। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य 1479 ईस्वी। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य 1162 ईस्वी। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास 1478 से 1573 ईस्वी। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य 1017 से 1127 ईस्वी। गौड़ीय संप्रदाय यानी चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1538 ईस्वी। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास 1478 से 1573 ईस्वी। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी 13वीं सदी। रामावत संप्रदाय रामानंद 1368 से 1468 ईस्वी। अद्वैतवाद शंकराचार्य राधा वल्लभी स्वामी हित 1502 ईस्वी। स्वामी हित हरिवंश। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट। पहला, वैष्णव धर्म का मूल तत्व अहिंसा है। दूसरा, देव विग्रह को सुंदर रूप देने का श्रेय वैष्णव भक्तों को ही। तीसरा, इस धर्म के अनुयायियों ने भक्ति रस की स्थापना में योग दिया। चौथा, विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण के इसमें प्रमुखता प्राप्त हुई है। पांचवा, सौंदर्य एवं माधुर्य का अपूर्व संयोग वैष्णव भक्ति में है। छठा, भक्ति श्रृंगार वीर एवं करुणा से युक्त श्रेष्ठ साहित्य की रचना वैष्णव भक्त कवियों ने की है। सातवां, राम का चरित्र इतना उदात्त है कि भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में राम काव्य उपलब्ध होता है। राम काव्य की प्रमुख रचनाएं जो विभिन्न भाषाओं में लिखी गई हैं इस प्रकार हैं। रचनाएं रचयिता भाषा रामायण वाल्मीकि संस्कृत, आध्यात्म रामायण संस्कृत, रामचरितमानस तुलसीदास हिंदी अवधी, रामचंद्र का केशवदास हिंदी ब्रजभाषा, साकेत मैथिलीशरण गुप्त हिंदी, कृत्तिवासी पंडित कृत्तिवास तमिल, कम्ब रामायण कम्बन तमिल, भावार्थ रामायण एकनाथ मराठी, अर्ध रामायण गिरधर स्वामी मराठी, रंग रामायण तेलुगु, भास्कर रामायण तेलुगु, गीति रामायण असमिया, हिंदी संत काव्य। संत शब्द की व्युत्पत्ति, सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर वर्थवाल ने संत का संबंध शांत से माना, जिसका अर्थ किया है निवृत्त मार्ग या वैराग्य। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है, जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है वह संत है। आजकल हिंदी साहित्य में निपुण निर्गुण पासों के नशी शाखा कवियों को संत कहा जाता है। संत काव्य का दार्शनिक आधार, संत काव्य का दार्शनिक आधार शंकराचार्य एवं कृष्णदेव द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथपंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम। उपनिषदों में निरूपित ब्रह्म जीव जगत एवं माया के स्वरूप को संत कवियों ने जीव का देव ग्रहण किया है। संतों का साधना पक्ष और भक्ति भावना शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। दोनों ही जीव को विशुद्ध ब्रह्म मानते तथा जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह माया के कारण है। आत्मा की सर्वरूपता सर्वशक्तिमत्ता को भी अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। नाथपंथियों ने उन्होंने शून्यवाद योग साधना गुरु की प्रतिष्ठा का तत्व लिया। इस्लाम के प्रभाव से उन्होंने एकेश्वरवाद ग्रहण किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया और अवतारवाद का विरोध किया। सूफियों से उन्होंने प्रेम भाव ग्रहण किया और दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग भक्ति भावना के व्यक्ति हेतु किया। सिद्धों के गुण उक्तियाँ रोडवासियाँ वैदिक परंपराओं एवं भाईचार का विरोध संत काव्य में मिलता है। रामानंद ने भक्ति का द्वार शूद्रों एवं निम्न वर्गों के लिए खोल दिया था। इसका प्रभाव संत काव्य पर दिखाई पड़ता है। बौद्ध एवं वैष्णवों की अहिंसा के भी संत काव्य धारा की भूम क्या आधार है। प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं। कबीर बीजक नाम से उनकी गणनाओं का संकलन किया गया है। इसके तीन भाग हैं, साखी सबद रमैनी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर जाति के जुलाहे थे, काशी में रहते थे तथा रामानंद उनके गुरु थे। कबीर के पत्नी का नाम लुई, पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। उनकी कविताओं में देशों की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावना है, प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में है। दूसरा रामानंद, जन्म 1368 ईस्वी तथा मृत्यु 1468 ईस्वी। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, शिक्षा काशी में हुई। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे जिनके नाम हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। रामानंद के शिष्यों में कबीर, पीपा, अनंतदास, धना प्रसिद्ध हैं। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तीर्थयात्रा, मूर्ति पूजा, वेदादि का विरोध करते हुए उन्होंने अंतः साधना पर बल दिया था। रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंच मात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। तीसरा रैदास, जाति के चमार थे, काशी के निवासी थे। जन्मकाल के संबंध में निश्चयपूर्वक कहना संभव नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवियत्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रैदास भी है। संत बाणी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बाणी शीर्षक में से प्रकाशित हुआ है। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। चौथा गुरु नानक, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के गुरुपद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जपू जी, असादीवार, रहिरास, सोहिली इनकी रचनाओं के नाम हैं। पांचवा हरिदास निरंजन, ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी माना जा सकता है। इनके लिखे ग्रंथ हैं अष्टपदी, योग ग्रंथ, ब्रह्मास्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। इन्होंने ब्रजभाषा में काव्य की रचना की है। छठा दादू दयाल, इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। वे एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि थे। इनके पंथ को परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। रज्जब सुंदरदास, प्रागदास, जगनगोपाल इनके प्रमुख शिष्य थे। इनकी रचनाओं का संकलन हरडेवाड़ी नाम से उनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया है। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल ने भी इसकी प्रमाणिक रचनाएं संकलित हैं। सातवां मलुकदास, इनका समय मुगल काल में है। इनके लिखे ग्रंथों के नाम हैं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त उक्षावली, बारह खड़े, स्फुटपद, राम अवतार लीला, ब्रजलीला तथा ध्रुवचरी। आलसियों का महामंत्र इन्हीं का रचा हुआ है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आठवां सुंदरदास, ये दादा दयाल के शिष्य थे और प्रतिभाशाली कवि थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली दो भाग में हुआ है। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया। सुंदरदास श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। केशव के रसिक प्रिय नंददास के रसमंजरी की निंदा उन्होंने एक छंद में की है। उनकी रचनाएं ब्रजभाषा में हैं और प्रमुख कवियों के अतिरिक्त लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास, बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा लाल, संत रज्जब, बाबरी पंथ की बाबरी साहिबा, संत सदना, संत पीपा, संत सेन, संत धन्ना भी संत कवियों में गिने जाते हैं। पंजाब के कुछ गुरुओं ने भी संत काव्य रचना की, जिनमें प्रमुख हैं गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया है और ब्रजभाषा में पंजाबी में सरस गेय पदों की रचना की है। गुरु अर्जुन देव एक अच्छी कवि थे। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 6000 पद संकलित थे। इनकी रचनाएं हैं सुखमणि, बावन आखरी और बारहमासा। शेख फरीद भी पंजाब के संत कवियों में उल्लेखनीय। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित हैं। संत वीरमान की उपदेश परक रचनाएं बाणी शीर्षक से संकलित की गई हैं। अक्षर अनन्य ने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे तथा दुर्गा सप्तशती का अनुवाद हिंदी पद्यों में किया। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, पहला, संत काव्य का भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। वह ताजमहल की कुशल का गए कालीगरी न होकर के रम्य पर्वत श्रेणियों की भांति सहज सुंदर है। दूसरा, कविताएं करना इनका लक्ष्य न था, कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। तीसरा, संत कवियों ने प्रमुख कबीर भक्त और कविवाद में हैं, समाज सुधारक पढ़े हैं। चौथा, संत कवि निर्गुण उपासक थे, वे ईश्वर को निर्गुण निराकार असन्मा विनाशी एवं सर्वव्यापी मानते हैं। कभी कभी वे इस गुण को राम गोविंद हरि आदि नामों से भी पुकारते हैं। पांचवा, संत काव्य में ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, यह ज्ञान वेद पुराण का कुरान से नहीं अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पवनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय वासना का कीड़ा जलकर नष्ट हो जाता है। अग्नि जू लागी नीर में बंधु जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। छठा, संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए इसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है, वही ज्ञान नेत्र खोलता है। गुरुदेव का अंग शीर्षक पर संकलित साख्य में कवि ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की। सातवां, संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है, इनकी दार्शनिक मान्यता शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित है। ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन, माया का अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता का प्रतिपादन, सब कुछ शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। आठवां, संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रसवाद का विधान किया है। कबीर का पद दुल्हन गावों मंगलाचार इसी प्रकार का भावात्मक रसवादी पद है। दूसरी ओर कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में उन्होंने साधनात्मक रसवाद का विधान किया है। अवधु गगन मंडल घर कीजे पद में साधनात्मक रहस्य की प्रवृत्ति है। नवा, संत कवियों ने बाया डंबरों का खंडन किया है, मूर्ति पूजा तीर्थाटन व्रत रोजा नमाज में इन्हें कोई विश्वास न था। हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वासारूढ़ियों धर्मांधता के लिए फटकारा है। वेद धर्म के सामान्य तत्वों सत्य अहिंसा प्रेम करुणा संयम सदाचार मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। दसवां, संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे, ऊंच नीच छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था का विशाप मानकर उन्होंने निर्भीकता से इसका खंडन किया है। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना, अधिकांश संत कवि स्वयं निम्न वर्ग से संबंधित थे, अतः उच्च वर्ग की मुखर आलोचना संत काव्य में अस्वाभाविक न थी। ग्यारहवां, संत काव्य में शास्त्र का विरोध करते हुए स्वानुभूति पर बल दिया गया है, उनकी उक्ति में खरापन एवं निर्भीकता है जिसे जनता ने पसंद किया, उनके कथन अनुभूति प्रधान है, इसे शास्त्रों की व्यर्थता प्रतिपादित की गई है। बारहवां, संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है, वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं, नारी निंदा करते हुए वे उसे विष की बेल तक कह देते हैं, नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण भी नाथ पंथियों का प्रभाव है। तेरहवां, संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है, साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपने काव्य में करते थे, देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। ब्रज अवधि खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी फारसी अरबी शब्दों के मिले जुले रूप के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। चौदहवां, संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग भावोत्कर्ष के लिए हुआ है जिसमें शांत रस प्रधान है। हिंदी सूफी काव्य भक्तिकाल के निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य एवं सूफी काव्य नामक दो शाखाएं। सूफी काव्य के लिए प्रचलित कुछ अन्य नाम है, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, रोमांसिक अथवा काव्य परंपरा आदि। स्पष्ट ही इस शाखा में प्रेमत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है, यह स्वच्छंद प्रेम है जिसे अंग्रेजी में रोमांस कहा गया है। इस प्रेम भावना में स्वच्छंदता सौंदर्य भावना साहसपूर्ण क्रियाकलाप विद्यमान रहते हैं तथा यह मर्यादावादी दाम्पत्य प्रेम से हटकर स्वच्छंद प्रेम समाज की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता। हिंदी के मध्यकालीन प्रेम आख्यान ग्रंथों में इस रोमांच का चित्रण किया गया है। प्रमुख सूफी कवि एवं उनकी रचनाएं, प्रमुख सूफी प्रेमाख्यानों में सर्वप्रथम रचना है मुल्ला दाऊद की चंदायन, जिसका रचना काल 1389 ईस्वी बताया गया है। दूसरे प्रसिद्ध सूफी कवि कुतुबन है, जिनकी रचना का नाम है मृगावती, इस ग्रंथ का रचना काल 1503 ईस्वी है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में सर्व प्रमुख जायसी तथा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, इस ग्रंथ की रचना 1947 हिजरी सन यानी 1540 ईस्वी में की गई थी। इसके अतिरिक्त उनके दो ग्रंथ और हैं, अखरावट एवं आखिरी कलाम। मंजनकृत मधुमालती का भी सूफी प्रेमाख्यान में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त उस्मान चित्रावली, शेख नबी में ज्ञानदीप एवं हंस जवाहिर नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरीता शेख निशार ने यूसुफ जुलेजा जुलेखा नामक प्रेम गाथाएं लिखी हैं। मुसलमान सूफी कवियों के अतिरिक्त हिंदी कवियों ने भी प्रेम गाथाएं लिखी हैं। इनमें प्रमुख है ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा दुखहरण दास कृत पुष्पावती। प्रसिद्ध प्रेमाख्यान कवि एवं उनकी रचनाएं। रचना रचयिता रचना वर्ष नायक नायिका भाषा हंसावली असाइत 1370 ईस्वी राजकुमार राजकुमारी हंसावली राजस्थानी हिंदी। चंदायन मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी लूर यानी चंदा अवधि। लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि 1459 ईस्वी लक्ष्मण सेन पद्मावती राजस्थानी। सत्यवती कथा ईश्वरदास 1501 ईस्वी ऋतुपर्ण सत्यवती अवधि। मृगावती कुतुबन 1503 ईस्वी राजकुमार मृगावती अवधि। माधवानल कामल कंदला गणपति 1527 ईस्वी माधव काम कंदला राजस्थानी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी रत्नसेन पद्मावती अवधि। मधुमालती मंजन 1545 ईस्वी मनोहर मधुमालती अवधि। ढोला मारोड़ा दोहा कुशल लाभ 1473 ईस्वी राजकुमार ढोला मरवाड़ी राजस्थानी। माधवानल काम कंदला चौपाई कल्लूल 1556 ईस्वी माधव काम कंदला राजस्थानी। रूपमंजरी नंददास 1568 ईस्वी कृष्ण रूपमंजरी ब्रजभाषा। छिताई वार्ता नारायण दास 1590 ईस्वी ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार छिताई राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। माधवानल काम कंदला आलम 1584 ईस्वी माधव काम कंदला अवधि। चित्रावली उस्मान 1613 ईस्वी सुजान चित्रावली अवधि। रस रतन पुहकर 1618 ईस्वी सोम रंबा अवधि। ज्ञानदेव शेख नवी 1619 ईस्वी ज्ञानदेव देवयानी अवधि। हंस जवाहिर काशिम शाह राजा हंस रानी जवाहिर अवधि। अनुराग मासूरी नूर मोहम्मद 1764 ईस्वी अवधि। इंद्रावती नूर मोहम्मद 1744 ईस्वी राजकुमार इंद्रावती अवधि। कथा रूप मंजरी जान कवि राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु पाला। प्रेमाख्यान काव्य धारा में काव्य परंपरा में सूफी कवियों के अतिरिक्त अन्य कवि भी हैं। सूफी प्रेमाख्यानों में अनिवार्यतः सूफी धर्म की मान्यताओं का निरूपण है किंतु सभी प्रेमाख्यानकों में नहीं। ये प्रेमाख्यानक प्रेम सौंदर्य विरह साहस स्वच्छंदता आदि से परिपूर्ण है। दूसरा जैसी सूफी कवियों में सर प्रमुख तथा उनके द्वारा रचित पद्मावती सूफी काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त जैसी के दो अन्य ग्रंथ और भी हैं अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया जबकि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया। ये दोनों ग्रंथ भी अवधि भाषा में रचे हुए हैं। तीसरा माधवानल काम कंदला के प्रसिद्ध प्रेम कथा को लेकर इसी नाम से तीन ग्रंथ लिखे गए जो क्रमशः गणपति कुशल लाभ एवं आलम द्वारा रचित है। आलम में नायक नायिका में केवल एक जन्म तक की ही कथावस्तु को सीमित रखा है जबकि अन्य दो में कई जन्मों का वृत्तांत है। चौथा जान कवि ने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की जिनमें से 29 प्रेमाख्यान ग्रंथ है। इनके लिखे प्रेमाख्यानकों में कुछ प्रमुख नाम है कथा रत्नावली कथा कनकावती कथा कंगवलावती कथा मोहिनी तथा कथा नलदमयंती कथा कलावती कथा रूपमंजरी कथा कलंदर आदि। इनमें काव्य कथा काव्य के लक्षणों का निर्वाह किया गया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनोटेड काम कदाचित वे हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू की रचना की है। इनोटेड काम बंद। उनके कथा तत्वों की रचना राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा के है। साथ ही उन्होंने प्रेमाख्यान को की शैली दोहा चपाई शैली के साथ साथ कविता सवैया शैली का भी प्रयोग किया है। पांचवा जायसी का पद्मावत अवधि भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रमुख महाकाव्य माना जाता है। इसकी कथा वस्तु का पूर्वाध कल्पित एवं उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना जाता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी का मत है कि इनोटेड काम प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा पद्मावत की कथा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। संभवतः जायसी ने उसी के आधार पर पद्मावत की रचना की है। इनोटेड काम अपन पद्मावत की रचना सूफी मत के प्रचार के लिए हुई या नहीं इस संबंध में मतभेद है। जायसी प्रसिद्धि पाने के लिए पद्मावत लिख रहे हैं ऐसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। ओ मैं जानी कवि असकिन्हा मुकया रहे जगत मय चिन्हा। छठा पद्मावत के विभिन्न पत्रों में रूपकत्व का आरोप किया गया। पद्मावत के अंत में दिए गए इस कैवक को कोई जिसमें पात्रों के आध्यात्मिक अर्थ दिए गए, कुछ विद्वानों ने प्रक्षिप्त माना, जैसे के अनुसार उस कैवक में प्रतीकार्थ नुनवत है, जिसके कारण उसे एक बृहद अनियोक्ति कहा गया है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक, राजा रत्नसेन मन का प्रतीक, सिंघलद्वीप हृदय का प्रतीक, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक, राघव चेतन शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन माया का प्रतीक, नागवती संसार का प्रतीक, हीरा मंतोता गुरु का प्रतीक। सातवां, पद्मावती वस्तु वर्णन के अंतर्गत वन वाटिका, समुद्र, पर्वत, नग, पर्व, उत्सव, भोज्य सामग्री, वस्त्र, आभूषणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इससे जनसाधारण के ज्ञान कोष में वृद्धि होती है। मध्यकालीन संस्कृति एवं लोक जीवन के विविध पक्षों का सहज स्वाभाविक चित्रण भी इसमें हुआ है। सौंदर्य, प्रेम, विरह, साहस, त्याग, निर्भीकता इनके नायकों की विशेषताएं हैं। सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, अधिकांश कवि मुसलमान हैं जिन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। ये काव्य ग्रंथ स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाली साहसिक प्रेम कथाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रेमाख्यानकों का नामकरण प्रयाग नायिका के नाम पर किया गया है। इनमें सभी कथानक रूणियों का पालन किया गया है। ये रूणियाँ हैं स्वप्न दर्शन या चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलन, अलौकिक शक्तियों द्वारा सदा सहायता उड़ने वाली राजकुमारियाँ आदि। लोक पक्ष में हिंदू संस्कृति का चित्रण प्राय सभी प्रेमाख्यानकों में है। श्रृंगार रस की प्रधानता है तथा वस्तु वर्णन प्रमुख हो गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया था, द्वा चौपाई शैली है। बहुविकल्पी प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? 1375 से 1650 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? 1385 से 1650। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? हिंदुओं के पराजित मनोवृत्ति। भक्ति भावना के मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना जाता है? दक्षिण भारत। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? शंकराचार्य। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित है? नाथ पंथ। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव में किया? बौद्ध धर्म। कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1398। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्या नाम? रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। ऋण सिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? विष्णु स्वामी। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम नेमबार का आचार्य। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? अद्वैत वेदांत। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? गोस्वामी विठलनाथ। मंगली बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? कृत्तिवासी रामायण। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य। बीजक में किस कवि की रचनाएं संग्रह थे? कबीरदास। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। रामानंद का समय क्या है? 1368 से 1468। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1469। हरदेवाड़ी के रचयिता कौन है? दादूदयाल। समाधि जो ग्रंथ किस कवि संत कवि की रचना है? हरिदास निरंजनी। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? पुरोहित हरिनारायण शर्मा। सुखमनी के रचयिता कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? 6000। असाबिदा सोहिला रहीदास किस कवि की रचना है? गुरु नानक। सुखमनी बावन आखरी बारहमासा आदि कवि किस कवि की रचनाओं का नाम है? गुरु अर्जुन देव। काहे रे नलनी तुम कुमलानी यह पंक्ति किस कवि की है? कबीर। ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए पंक्ति किस कवि की है? कबीर। अजगर करे न चा करी पंछी करे न काम यह पंक्ति किस कवि की है? मलुकदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? सुदुक्कड़ी भाषा। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किस समीक्षक ने कहा? अजय प्रसाद द्विवेदी। साखी सभद्रमणि किसकी रचना है? कबीर। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी। संत काव्य में किस तरह रस की प्रधानता है? शांत रस। कबीर की लोटमासी में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस। अवधुगगन मंडल घर की जय पंक्ति किस कवि की है? कबीर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? रैदास। दुल्हिन गाँव मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास। पानी ही मैं हिम भया भया हिम गया बिलाय यह पंक्ति किस कवि की है? कबीर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। सिंगारस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? सुंदरदास। सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन है? सुंदरदास। इन संत कवि में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन सा? सुंदरदास। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से? निर्गुणोपासना सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रामदेव। भक्तमान के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य हैं? 12। गाना एक एक आनंदते गाना इन मोह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कवि किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत। कबीर पंथ का निर्माण किस सिद्धांत से हुआ है? भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावत्म, रसवाद, वैष्णव का अहिंसावाद। भारतीय काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? हिंदू शास्त्रों से। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर के राम नाम किससे प्राप्त हुआ है? रामानंद से। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? सूफी संप्रदाय। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं की है? अष्टपदी योग ग्रंथ। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग निर्विदिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? कबीर। माया महाठगनी हम जाने, किस कवि की पंक्ति है? कबीर। जिंदगी कौन सा कवि समस्या धारक पहले भक्त और कविता बाद में? कबीर। सूफी प्रेमाख्यानकों में कौन सी विशेषता प्राप्त होती है? नायिका के नाम का अंत वती से होता है। नायिका किसी द्वीप की निवासी होती है। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन तथा गुणकथन नायक नायिका में प्रेम होता है। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति। अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा? पद्मावत। सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? सूफ। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? प्रेम। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई? पति रूप में। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? हंसावड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? मृगावती। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? हरे प्रसाद द्विवेदी। चंद्रायन की रचिता का नाम क्या? मुल्ला दाऊद। मधुमालती की रचनाकार का नाम अंजन। शिख नबी की कौन सी रचना है? ज्ञानदीप। माधवानल कामकंदला नामक रचना के किस कवि की? गणपति। ज्ञान कवि की लिखी प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या कितनी है? 29। गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? राजस्थानी। ढोला मारूला दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यान है? राजस्थानी। मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर। किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? सत्यवती कथा। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? सुजान। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? देवयानी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधि। झांसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? शेरशाह। तन चितौर मन राजा कीना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत। माधवानंद कामंद कला पर प्रेमाख्यान किस कवि ने लिखा है? गणपति आलम कुशल्ला। रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? पद्मावत। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख वाला था? जायसी। और मैं जानी कवित अस्किन्हा मकुहर है जगत महचिन्हा उक्त पंक्ति किस कवि की है? जायसी। किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह किया जाता है? पद्मावती। जायसी गुरु का नाम क्या था? शेख मोहिदी। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? बाबर। पद्मावत के अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली? फारसी लिपि। मोई का हंसे सिक्की को रही पंक्ति किस कवि की है? जायसी। जायसी की किस रचना वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों की भरी चौपाइयां की गई हैं? अखावट। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? कयामत का। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? एक तोता का। रत्नसेन कहाँ का राजा? चित्तौड़। राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में? पद्मावत। भूली चकोर दीठी मुख लावा मेघ घटा मुह चंद्र दिखावा, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? पद्मावत। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? पद्मावत। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यान काव्य में है? पद्मावत। उस्मान की चित्रावली में किस शहे वक्त की प्रशंसा की गई है? जहांगीर। जैसी पद्मावत में कितनी अर्दलियों के बाद दोहा है? 7। कहाँ मानसर चाह सुपाई पारस रूप यहाँ लगी आई, यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी। वीरा वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? आषाढ़। हंस जवाहरी के रचयिता का नाम आते हैं? काशिम शाह। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? अनुराग बासुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान कवियों में से किसी एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? सूरदास पंजाबी। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी है? पाटड़। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काम ग्रंथ में है? माधवानल कामंद कला पद्मावत की रचना काल क्या है 1540 ईस्वी। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है श्रृंगार रस। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है सूफी काव्य। जैसे ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है सैयद अशरफ। यहाँ तन झरो झार के कहो कि पवन उड़ाव यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है पद्मावत। लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है दामोदर कवि।